हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 11वां अध्याय श्लोक संख्या 19 और 20। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायां ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषित करा नवनीरधाभा पीतांभरधरुण बिंबफल धरोष्ठात् पूर्णेन्द्र सुंदर मुखात् अरविंद नेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति देवैस्तवी वेदी सांगपत क्रमोपनिषदि गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकीं। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। मूकं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनकारणम्। अध्याय 11 जिसका शीर्षक है भगवान कृष्ण का द्वारिका में प्रवेश। तो कल हमने देखा जैसे ही भगवान द्वारिका में प्रवेश किए तो भगवान के जितने भी संबंधी हैं जिनके नाम हमें सुख गोस्वामी ने बताए कि वासुदेव प्रद्युम्न और जामवती का बेटा जो सांब अक्रूर उग्रसेन बलराम इत्यादि, ये सब भगवान को रिसीव करने के लिए सब जो जो कार्य कर रहे थे वो सारे कार्य जैसे اٹھنا بیٹھنا سونا کھانا پینا سب کچھ چھوڑ کے بہت سی منگلک وستویں لے کر برہمنوں کے ساتھ ویدک منتر جو اچارن کر رہے تھے ان کے ساتھ بھگوان کا سواگت کرنے کے لیے رتھوں پر چڑھ کر اس کی بھگوان کی اور آنے لگے. واستو میں یہ سب تو بھگوان کے سمبندھی ہیں, پرنتو واستوکتا تو یہ ہے کہ دوارکا کا ہر ایک ویکتی چاہے وہ کوئی بھی ہو کرشن کو اپنے پرانوں سے ادھک مانتا ہے, چاہے کوئی بھی ہو وہ کرشن سے اتنا پریم کرتا ہے کہ جیسے ہی کرشن کے آنے کی آواز دوارکا دیش آ رہے ہیں ایسا جب دوارکا دیش کے پدھارنے کا کی سوچنا ملی تو چاہے جو ویکتی جو کر رہا تھا ابھی کس کس کا نام لکھے سوت گوسوامی اس لیے بار بار چ چ چ کر کے چکار کے ساتھ وہ سب کو اس کے اندر سمیلت کر رہے ہیں کہ یہ بھی دوسرے بھی بہت سارے آئے تھے پرنتو میں مکھی مکھی کے نام بتا رہا ہوں. آج سوت گوسوامی ان ویشیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جنہوں نے جیسے ہی بھگوان کے آنے کے وشے میں سنا تو وہ ویشیائیں بھی تیار ہو کر جو نرتکیاں جو دوارکا میں رہتی تھی نرتیہ کرتی تھی ان کو بھی ہے نا جیسے پتا چلا کہ دوارکا دیش آ رہے ہیں تو وہ بھی سج سنور کر اچھے سے آبھوشن دھارن کر کے بھگوان کا سواگت کرنے کے لیے چل رہی ہیں. یہ سوت گوسوامی ان نرتکیوں کے وشے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے سج دج کر آ رہی ہیں, کیسے ان کے کنڈل ہل رہے ہیں, کیسے ان کا مکھ بہت سندر لگ رہا ہے. یہ سوت گوسوامی ان کی پرشنسا نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ بھگوان کی بھکتی کی پرسنتا, کیونکہ بھگوان کی بھکتی یدی کوئی بھی کرتا ہے چاہے وہ بھکت ہو یا چانڈالی کیوں نہ ہو ویشیا ہو چاہے کچھ بھی ہو, لیکن جب وہ بھگوان کی بھکتی کرنے لگتا ہے جب وہ کرشن پریم کے لیے کوئی کاریہ کرتا ہے تو وہ دیویہ بن جاتا ہے, وہ سادھارن نہیں رہتا, اس لیے وہ پرشنسنیہ ہو جاتا ہے. اس لیے آسوت گوسوامی کہتے ہیں وار مکھیا شتشوشما شلوک نمبر 19 میرے ساتھ ساتھ اچارن کیجیے. وار مکھیا شتشو यानस्तद्दर्शनोत्सुका लसत्कुंडल निर्भात कपोल वदनश्रियः वारमुख्याश्च शतशो यानस्तद्दर्शनोत्सुका लसत्कुंडल निर्भात कपोल वदनश्रियवारमुख्याश्च शतशो यानस्तद्दर्शनोत्सुका लसत्कुण्डलनिर्भात कपोल वदनश्रियः. शब्दात् वारमुख्या मतलब जो विख्यात वेश्याएं थीं کتنی تھی وہ بول رہے شتشو یعنی کہ اتنی تھی سینکڑوں تھی بہت ساری تھی. اور یانے تد درشنوتسک یانے مطلب سواریوں پر پالکیوں پر کھڑے ہو کر تد درشن بھگوان شری کرشن کی بھینٹ کرنے کے لیے اتسک تھی اتینت ہی اتاولی تھی کرشن کو دیکھنے کے لیے تو وہ پالکیوں پر بیٹھ کر بھگوان کی اور آ رہی تھی. وہ پالکیوں پر بیٹھی تھی اور کیسا شنگار کیا تھا لسد کنڈل. لسد کنڈل مطلب ان کے کانوں میں کنڈل جھول رہے تھے لٹک رہے تھے اور نربھات وہ بہت زیادہ چمک رہے تھے. کپول ودنا شریا یعنی ان کے گال ان کا مکھ بہت ہی سندر شریا مطلب بہت بہت سندر لگ رہا تھا. اتنے ان کی آج تک تو انہوں نے جو بھی کیا وہ گرنت کاریہ تھا لیکن آج جیون میں پتہ نہیں ویسے تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ آج جو یہ کاریہ کر رہی ہیں ارتھات بھگوان کے لیے اتسک ہو کر ان کے درشن کرنے کے لیے جب گھر سے نکل رہی ہیں تو وہ اتنی سندر دکھ رہی ہیں उनका मुख कमल इतना सुंदर दिख रहा है कि सूत गोस्वामी से भी प्रशंसा किए बगैर नहीं रह सके। तो उन्होंने देखिए, उस समय सैकड़ों विख्यात वेश्याएं विविध सवारियों पर आरूढ़ होकर आगे चली और सभी भगवान से मिलने के लिए उत्सुक थीं और उनके सुंदर मुखमंडल चमचमाते कपूलों से सुशोभित थे, जिनके कारण उनके गालों की शोभा बढ़ रही थी। वास्तव में भक्तों, ये कोई भी कार्य जब हम करते हैं ये संसार में आकर, वो हमारे पूर्व जन्म से संबंधित होता है। कुछ जन्मों के हमारे ऐसे कर्म होते हैं जिसके कारण हमें कोई इस संसार में कार्य करना पड़ता है। कभी मतलब कर्म ऐसा होता है, या तो नया भी हो सकता है या पूर्व जन्म का भी होता है। इसलिए भगवान कहते हैं घना कर्मणों गति। हम ये नहीं समझ सकते कि क्या क्या कर्मों की क्या गति है, पता नहीं पहले कर्म का यहाँ पर हम फल भी भोग रहे हैं या फिर नया कर्म कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पता हमें। तो शास्त्रों के अनुसार हमें समझना चाहिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी जो हमारे पिछले जन्म के करतूत होंगे ना, वो तो हमें भुगत नहीं पड़ेंगे। तो यदि कोई भी हम किसी भी स्थिति में है, कोई भी सरकमटेंसेस है, अगर हम उस सरकमटेंसेस में कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हमारा स्टेज जो है वो बहुत ऊपर आ जाता है। वो कृष्ण भगवान भगवती गीता में बताते हैं 9.32 में, स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रा तेपी अंतिक परम गति। तुम क्या हो तब मैं नहीं देखता, लेकिन अगर तुम मेरी शरण में आ जाते हो तो तुम चाहे कोई भी हो, मैं उसे परम गति, तुम्हें परम गति अवश्य प्रदान करूंगा। श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि यदि वेश्याएं भगवत भक्त हो तो हम उनसे भी घृणा नहीं कर सकते। आज भी भारत के बड़े बड़े नगरों में अनेक वेश्याएं हैं जो भगवान की निष्ठावान भक्त हैं। समय के फेरे से किसी को ऐसा पेशा ग्रहण करना पड़ता है जो समाज में सम्मानित ना हो, लेकिन इससे भगवत भक्ति करने में कोई व्यवधान नहीं आता। भगवान की भक्ति समस्त परिस्थितियों में अप्रतिहित है। इस वर्णन से ज्ञात होता है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व द्वारिका जैसे नगर में, जहां पर श्री कृष्ण निवास कर रहे थे, वेश्याएं रहती थीं। इसका अर्थ है कि समाज के समुचित निर्वाह के लिए वेश्याएं आवश्यक हैं। सरकार शराब की दुकान खोलती है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सरकार सुरापान को प्रोत्साहित करना चाहती है। भाव ये है कि एक ऐसा वर्ग है जो सभी कीमत पर सुरापान करेगा, और ऐसा अनुभव है कि मद्य निषेध से बड़े बड़े शहरों में शराब की तस्करी को बढ़ावा मिलता है। इसी पर प्रकार जो व्यक्ति घरों से संतुष्ट नहीं है, उन्हें ऐसी छूट की आवश्यकता होती है, और यदि वेश्याएं ना हो तो ऐसे निम्न लोग अन्यों को वेश्यागमन के लिए प्रेरित करेंगे। अच्छा होगा कि वेश्याएं बाजारों में उपलब्ध हों, जिससे समाज की पवित्रता कायम रहे। समाज के अंदर वेश्याओं को प्रोत्साहन देने की उपेक्षा वेश्या वर्ग को बनाए रखना अच्छा होगा। वास्तविक सुधार तो सभी लोगों को भगवत भक्त बनने के लिए प्रबुद्ध करना है, जिससे जीवन के समस्त पतनोन्मुख कारकों पर रोक लग जाएगी। विष्णु स्वामी वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य श्री बिल्वा मंगल ठाकुर अपने गृहस्थ जीवन में एक वेश्या के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी विष्णु स्वामी, जो कि वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य हैं, उनके विषय में बता रहे हैं कि जब वो गृहस्थ थे तो उनका नाम था बिल्वा मंगल, और वो एक वेश्या जिसका नाम था चिंतामणि, उसके प्रति अत्यधिक आसक्त थे। और वो वेश्या जो थी वो भगवान की भक्त थी। एक दिन जब अखंड वर्षा हो रही थी, तभी बिजली चमक रही थी, तो उसी में बिल्वा मंगल ठाकुर चिंतामणि के घर पहुंचे। वह आश्चर्यचकित थी कि ऐसी भयानक रात्रि में बड़ी हुई तरंगायित नदी को पार करके ठाकुर जी यहाँ पर कैसे आए। उसने बिल्व मंगल ठाकुर से कहा कि उस नगण्य स्त्री के हाड़ मास के प्रति इतना आकर्षित हो, यदि उसे भगवत भक्ति में भगवान की दिव्य सुंदरता के प्रति उस आसक्ति को लगाया जाए तो कितना अच्छा हो। यह ठाकुर के लिए परीक्षा की घड़ी थी और वे वेश्या के वचनों से आत्म साक्षात्कार की ओर मुड़े। बाद में उन्होंने उस वेश्या को अपना गुरु माना और उन्होंने अपने काव्य में कई स्थलों पर चिंतामणि के नाम का गुणगान किया, जिसने उन्हें सही मार्ग दिखाया। श्रीमद् भगवद गीता 9.32 में भगवान कहते हैं, हे प्रथा पुत्र, निम्न कुल में उत्पन्न चंडाल, नास्तिकों के वंश में उत्पन्न मनुष्य तथा वेश्याएं तक जीवन सिद्धि प्राप्त करेंगी यदि वे भगवान की अनन्य भक्ति की शरण ग्रहण करेंगी, क्योंकि भक्ति के मार्ग में नीच कुल में जन्म तथा वृत्ति अवरोधक नहीं है। यह मार्ग उन सबों के लिए खुला है जो अनुगमन करना चाहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि द्वारिका की वेश्याएं जो भगवान से मिलने के लिए इतनी उत्सुक थीं, उनकी अनन्य भक्ति थी और उस तरह श्रीमद् भगवद गीता के वचन के अनुसार वे सभी मोक्ष के पथ पर थीं। अतएव समाज में जिस एकमात्र सुधार की आवश्यकता है वह है सारे नागरिकों को भगवत भक्त बनाना। इस तरह उनमें सर्व स्वर्गवासियों के समस्त सद्गुण स्वतः आ जाएंगे। दूसरी ओर वे अभक्त हैं जिनमें एक भी सद्गुण नहीं है, भले ही भौतिक दृष्टि से कितने ही उन्नत क्यों न हो। अंतर इतना है कि भगवत भक्त मोक्ष के स्थान पर होते हैं, लेकिन अभक्त भवबंधन में अधिकाधिक फंसते जाते हैं। सभ्यता की प्रगति की कसौटी यह है कि लोग शिक्षित हों और मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हों। श्री प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर बात समझा रहे हैं कि यदि आप भक्त बन जाते हो कृष्ण के, तो चाहे आप किसी भी स्टेज पर हो, आपके अंदर सारे सद्गुण आ जाएंगे, स्वतः आ जाएंगे। लेकिन अगर आप अलग अलग से सारे सद्गुणों को एकत्रित करते रहोगे, अगर भक्ति नहीं करोगे, तो वो सब फिजूल हैं, व्यर्थ हैं। क्योंकि वास्तविक सभ्यता की प्रगति की कसौटी क्या है कि लोग इतने शिक्षित हों कि मोक्ष के मार्ग पर चले। केवल सद्गुरु से किसी को मुक्ति नहीं मिलती है, मुक्ति प्राप्त करने के लिए कृष्ण भक्ति आवश्यक है। तो इस संसार का कल्याण यदि किसी तरह से पॉसिबल है, तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि समाज में जिस एकमात्र सुधार की आवश्यकता है वह है सारे नागरिकों को भगवत भक्त बनाना। क्योंकि जब भगवत भक्त बन जाएंगे तो सारे अपराध उनके हृदय से न केवल पाप मुक्त हो जाएंगे, बल्कि पाप करने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी और उसी से संसार का कल्याण होगा। आगे श्लोक नंबर 20, कृपया मेरे साथ उच्चारण कीजिए। नट नर्तक गंधर्वा सूतमागत वंदना गायंती चोत्तम श्लोक चरितान्यद्भुतानि च। नट नर्तक गंधर्वा सूतमागत वंदिनः गायंती चोत्तम श्लोक चरितान्यद्भुतानि च। नट नर्तक गंधर्वा सूतमागधवन्दिनः गायन्ति चोत्तम श्लोक चरितान्यद्भुतानि च। आगे श्री सुत गोस्वामी बता रहे हैं कि अब ये सब तो आगे जा रही थी और उनके साथ साथ कौन आ रहे थे, नट नर्तक गंधर्व सूत मागध वंदिना। ये सिक्स टाइप के अलग अलग मतलब एक्टर्स थे वो आ रहे हैं। नाटक, नाट्य किसको बोलते हैं? जैसे नाटक करते हैं ना, आपको नाट्य कैसे करते हैं? कोई कोई लीला गा रहा है और उसके उसको एक्शन से करके बताते हैं, जैसे अपनी मुद्राओं से, अपने नेत्रों से। जैसे भगवान ने कोई कार्य किया हो तो उसको ऐसे करके बताते ना अपने हाथों से, उसको बोलते हैं नट। और नर्तक, नर्तक उसको बोलते हैं जैसे कोई सॉन्ग गा रहा है तो सॉन्ग के ऊपर डांस करना है ना, नृत्य करना। अब एक्टिंग जो कर रहा है नट वो अलग होता है, डांस एक अलग होता है, म्यूजिक के साथ डांस करते हैं वो अलग होता है। गंधर्वा, गंधर्वा का मतलब होता है जो गाते हैं ना। अब वैसे तो गंधर्व जो स्वर्ग में गवैये होते हैं उनको बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर उनको बताया जा रहा है जो बहुत ही सुंदर गाना गा रहे हैं, सिंगिंग जिनकी बहुत अच्छी है द्वारिका में। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि एक्टर्स, डांसर्स और सिंगर्स ये सब। और आगे बोल रहे हैं सूत, सूत का मतलब होता है जो बहुत ही अच्छे तरीके से जो पुराणों की गाथाएं होती है ना, पौराणिक गाथाएं, उनको गाते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से। जैसे हमने सुना है कि लव और कुश को वाल्मीकि ने बहुत ही सुंदर तरीके से रामायण गाना सिखाया था, रामायण के विषय में, और उसको बोलते हैं सूत। और मागध, मागध किसको बोलते हैं? जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो भी सिंगिंग करते हैं, वो क्या गाते हैं? राजा के वंश की प्रशंसा करते हैं कि उनके वंश में ये बड़े बड़े मतलब अच्छे अच्छे व्यक्ति गुजर चुके हैं, इतने शूरवीर गुजर चुके हैं, उनको मागध बोलते हैं। और वंदिना उनको बोलते हैं जो समय के अनुसार, कोई भी समय, अभी कोई भी समय हो उसके अनुसार उसको प्रस्ताव दिया जाता है तो वो सिंगिंग करते हैं। मतलब कहने का क्या अर्थ है कि सूत, मागधा, वंदना के पुराणों की गाथाओं गाने वाले थे बहुत सारे, और दूसरे बहुत सारे वंश की प्रशंसा करने वाले थे, और बहुत सारे दूसरे थे जो समय के अनुसार गीत गा, मतलब अलग अलग टाइप के लोग थे। और वो सब क्या कर रहे थे? गायंती चोत्तम श्लोक, वो सब कृष्ण के अद्भुत चरित्र को, चरितान्यद्भुतानि च, भगवान उत्तम श्लोक कृष्ण के अद्भुत चरित्र को गा रहे थे। कोई एक्टिंग करके बता रहा था, कोई नृत्य करके बता रहा था, कोई गा के बता रहा था, कोई किस तरह से, मतलब हर कोई अपने अपने तरीके से कृष्ण को प्रसन्न करना चाह रहे थे। मतलब भगवान के अद्भुत चरित्रों को बता रहे थे। क्या अद्भुत चरित्र बता रहे थे? जैसे भगवान ने महाभारत के युद्ध में किस किस प्रकार से, अब ऐसा नहीं है कि भगवान वहां पर युद्ध कर रहे थे और यहाँ द्वारिका वालों को कुछ पता नहीं, एक एक क्षण की खबर होती थी भगवान के विषय में। जहां पर भले मोबाइल नहीं होता था, रेडियो टेलीविजन नहीं होता था, लेकिन बहुत अच्छे संवाददाता होते थे। और वो क्या करते थे भगवान की विषय में, अभी इतनी सारी भगवान की रानियां हैं तो क्या ऐसे बैठी हुई थी कि पता नहीं कृष्ण वहां पर क्या, कितने सारे उनके गुप्तचर होते थे, जाते थे, सूचनाएं लेकर आते थे कि आज भगवान ने ये किया आज। और जैसे ही कोई सूचना आती थी उसके अनुसार इतने सारे सिंग, इतने सारे सॉन्ग्स बनते थे, प्रशंसा थे, गीत बनते थे, फिर सब उनको, रानियों को गा के सुनाए जाते थे। तो इस तरह से द्वारिका में सदैव कृष्ण चर्चा चलती रहती थी। तो अब आज क्योंकि भगवान सामने हैं तो भगवान के चरितान्यद्भुतानि च, भगवान के अद्भुत चरित्र को, के महाभारत युद्ध में भगवान ने किस प्रकार से पांडवों की रक्षा की, किस तरह से भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, किस तरह से भगवान ने अश्वत्थामा की मृत्यु का बहाना करके गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बना, मतलब जो जो भगवान ने अद्भुत अद्भुत कार्य किए थे जो हमारी बुद्धि से परे हैं, वो सब गा गा के बता रहे थे कि किस प्रकार परीक्षित की रक्षा की। इसके अतिरिक्त ब्रज की अद्भुत लीलाएं, वो सब गायंती चोत्तम श्लोक चरितान्यद्भुतानि च, वो सब गाकर सब भगवान को प्रसन्न कर रहे थे। अनुवाद देखिए, पटु नाटककार, कलाकार, नर्तक, गायक, पौराणिक, वंशावली विशारद, भांड तथा विद्वान वक्ता यानी वाचक, सबों ने भगवान के अलौकिक कार्यकलापों से प्रोत्साहन होकर अपना अपना योगदान दिया। इस प्रकार वे आगे बढ़ते चले गए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि 5000 वर्ष पूर्व समाज को नाटककारों, कलाकारों, नर्तकों, गायकों, पौराणिकों, वंशावली विशारदों और सार्वजनिक वक्ताओं की भी आवश्यकता पड़ती थी। नर्तक, गायक तथा नाटक कलाकार अधिकांशतः शूद्र जाति के होते हैं, जबकि विद्वान पौराणिक, वंशावली विशारद भाट तथा सार्वजनिक वक्ता ब्राह्मण जाति के होते हैं। ऐसे नट, नर्तक, गायक, पौराणिक भाट तथा सार्वजनिक वक्ता विभिन्न युगों तथा कल्पों में भगवान के अलौकिक कार्यकलापों का वर्णन करते थे, किसी सामान्य घटना का नहीं। ना ही ये घटनाएं किसी तिथि क्रमानुसार होती थी। सारे पुराण ऐतिहासिक तथ्यों से पूर्ण हैं। इनमें विभिन्न कालों तथा विभिन्न लोकों में भगवान से संबंधित विषयों का वर्णन है। अतएव जब आधुनिक इतिहासकार कोई श्रृंखला सूत्र नहीं पकड़ पाते तो वे अप्रमाणिक ढंग से यह आलोचना करते हैं कि सारे पुराण कपोल कल्पित हैं। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी खास बात बता रहे हैं कि देखो, पुराणों में क्या है कि सारी जो भगवान की विभिन्न लीलाएं लिखी हुई है ना, वो ऐसी सूत्र नहीं है। कभी जैसे महाराजा प्रहलाद के बारे में बता दिया, उसके बाद महाराजा बलि के बारे में बता दिया, उसके बाद है ना ययाति के बारे में बता दिया, इससे तो इसका कोई है ना बैलेंस नहीं है। तो लोग क्या सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब कल्पित है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि भगवान की जो लीला है वो अलौकिक कार्यकलाप जो है वो एक बार नहीं, विभिन्न युगों में अलग अलग और विभिन्न ब्रह्मांडों में होती रहती है भगवान की लीलाएं। तो कहीं पर भी भगवान ने कुछ भी किया हो, सीरीज में नहीं है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। हमें तो ये जानना है कि भगवान ने क्या किया। अब तो फिर है ना, इसको ये कुछ कल्पना नहीं होती है। जो शास्त्रों में भगवान के या अद्भुत कार्यकलाप लिखे हुए हैं वो वास्तविकता है, तो हमें उन पर श्रद्धा रखनी चाहिए। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ तक कि 100 वर्ष पूर्व भारत में सारे नाटकों का कार्य परमेश्वर के अलौकिक कार्यकलापों पर ही केंद्रित होते थे। नाटकों के खेल जाने पर निश्चित रूप से जनसामान्य का मनोरंजन होता था और यात्रा टोलियां यानी नाटक मंडलियां भगवान के अलौकिक कार्यों का अभिनय करती थी। इस प्रकार प्रत्येक निरक्षर किसान शैक्षिक योग्यता ना होने पर भी वैदिक साहित्य के ज्ञान में सम्मिलित होता था। यानी कि श्री प्रभुपाद जी कितनी अच्छी बात बता रहे हैं कि 100 साल पहले ऐसा होता था कि कभी भी कुछ प्रोग्राम होता था तो नाटककारों को बुलाया जाता था और वो भगवान की लीलाएं करके बताते थे। तो जो सामान्य लोग होते थे, चाहे किसान हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे शूद्र, शिक्षक मतलब जो स्टूडेंट्स होते थे, जो भी अब जारे प्रोग्राम होता था तो सब लोग वहां पर आते थे और सब लोग जो है वो इतिहास भले जानने, इतिहास के बारे में उनको नहीं पता था लेकिन स्टोरीज भगवान की सारी पता होती थी। और आज हमारे बच्चों की क्या हाल है, उनको पता ही नहीं है वेदव्यास जी कौन थे, शुकदेव और वेदव्यास जी का आपस में क्या रिश्ता था, भगवान कृष्ण अर्जुन के क्या लगते थे, सुभद्रा का भगवान कृष्ण ने अर्जुन के साथ विवाह कैसे करवाया, ये कुछ भी मतलब पता ही नहीं है। क्योंकि अब आधुनिक जो लोग हैं वो ज्यादातर सिर्फ ड्रामास, जो ड्रामा सीरीज होते हैं टीवी में, अलग अलग प्रोग्राम्स और वीडियोस वगैरह, ये सिनेमा वगैरह देखना चाहते हैं, भगवान की ये नाटक वगैरह वो सब देखते नहीं, तो उनको इतिहास के विषय में कुछ पता ही नहीं होता। इसी शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, अतएव सामान्य व्यक्ति के आध्यात्मिक प्रकाश के लिए नाटककारों, गायकों, वक्ताओं आदि की आवश्यकता होती है। भांट किसी विशेष परिवार के वंशजों का पूरा ब्योरा प्रस्तुत करते थे। आज भी भारत के तीर्थ स्थानों के गाइड यानी पंडे किसी भी नवागतुक का पूरा वंश ब्योरा प्रस्तुत करते हैं। कभी कभी यह आश्चर्यजनक कृत्य ऐसी महत्वपूर्ण सूचना पाने के कारण अधिक ग्राहकों को आकर्षित करता है।
तो श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ पर उनके बाद सूत मागध वंदिना, तो ये जो मागध होते हैं जो वंश की पूरी वंश के विषय में, कोई राजा की जो पूरी वंशावली है उसके विषय में पूरा सही तरह से बता देते, उसका पुत्र ये था, उसका पुत्र ये था, उसका पुत्र ये था, और कुछ पुराणों से गाथाएं बता देते कुछ इस तरह। तो ये सब श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, इतना अच्छे तरीके से भगवान के विषय में वर्णन कर रहे थे, भगवान के अद्भुत चरित्र के विषय में बताकर सब कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते थे और भगवान के अलौकिक कार्यकलापों से प्रोत्साहित होकर अपना अपना योगदान दे रहे थे। तो ये सब भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने अपने शक्ति के अनुसार कार्य कर रहे थे। अब आगे देखेंगे और क्या क्या होता है भगवान के इस द्वारिका के द्वारिका में प्रवेश करने के समय। कृपया मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।